ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच आदरणीय राजयोगी वरिष्ठ राजयोग शिक्षक राजू भाई जी उपस्थित हैं। भाई साहब का परिचय कहे तो आपका जन्म कानपुर में बहुत आध्यात्मिक परिवार में हुआ। 1972 से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं अलग अलग विंग्स के द्वारा, विभागों के द्वारा आप हमारे जो तीनों कॉम्प्लेक्स हैं उसमें सेवाएं दे रहे हैं। विशेष आपके लेखन द्वारा ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल रतन संस्था का एवरी मंथ जो हमारा पत्र पुष्प भगवान के घर से जो हमें लेटर मिलता है उसके लिखत, उसका लेखन भी आपके द्वारा किया जाता। विशेष तौर पर भाई साहब ने जो प्रोजेक्ट, जो अभियान आप चला रहे हैं, जो योजना है शाश्वत यौगिक खेती योजना, जिसमें मेडिटेशन और विदाउट केमिकल खेती करने के लिए आप किसानों को प्रेरित करते हैं, किसानों को मुख्यालय में बुला करके उनको भी उस रीति यौगिक खेती करने की प्रेरणाएं देते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत बहुत उसको अप्रिशिएट किया जाता। वैसे ही ग्राम दत्तक योजना जैसे सारे ये जो सेवाएं हैं उसमें आपका सक्रिय, आप उसका संचालन करते हैं और उसमें भी भाई साहब अपने अमूल्य रतन करके पीस ऑफ माइंड टीवी पर जो टॉक शो होता है जिसमें ज्ञान के रत्नों के साथ जो हमें सुख शांति भरी जीवन बनानी है, ज्ञान की जो हमें क्लैरिटी चाहिए वो आप अपने अनुभवों के द्वारा उसको सुलझाते हैं। और आज विशेष विशेष ये बहुत ही सुंदर क्लास है। हमेशा बच्चों को स्टोरी सुनना पसंद आता पर भाई साहब आज हमें इस संस्था के रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं। उसको हम बहुत प्यार से कहते, इसको हम कहते यज्ञ, दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इस यज्ञ की जो ओरिजिनल, जो उनकी आंखों देखी अनुभव युक्त कहानी है वो यज्ञ हिस्ट्री। ये संस्था कहाँ से शुरू हुई, यहाँ कब आए और यहाँ से सारे विश्व में आज कैसे ये संस्था अपना विश्व कल्याण का कार्य परमात्मा द्वारा जो किया जा रहा है वो कर रहे हैं, उसका हमें भाई साहब अनुभव युक्त कहानी सुनाएंगे। आदरणीय भाई साहब, आपका यूएई परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति। सभी को आबो में अच्छा लग रहा है ना, बादलों के बीच में बरसात के दिनों की रिमझिम। आपके यहाँ तो बहुत गर्मी है ना, दुबई में तो गर्मी प्रसिद्ध है, तो आपको ऐसे सुंदर वातावरण में, आध्यात्मिक परिसर में आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का अवसर मिला, ये भी बहुत अच्छा भाग्य कहें, जो इतनी दूर से आप माउंट आबू में विशेष रिट्रीट करने के लिए आए हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, जो इसके संस्थापक हैं उनकी जीवन कहानी सुनी तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आज करीब 89 वर्ष का इतिहास मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें 54 इयर्स तो हमने इसी यज्ञ में बिताए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। जैसे यज्ञ के अंदर अग्नि होती और उस अग्नि के अंदर लोग घी, तिल, जौ, कई प्रकार की सामग्री स्वाहा करते, ऐसे ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें योग की अग्नि है और उस योग की अग्नि में हम अपनी कमी कमजोरियां संस्कार स्वाहा कर देते हैं परिवर्तन करने के लिए। कैसे इस यज्ञ की स्थापना हुई आज से 89 वर्ष पहले 1936 इस विद्यालय का स्थापना का साल है। उसके पहले जिस संस्था के संस्थापक का परिचय मुझे देना है, उनका लौकिक जन्म अविभाजित भारत, उस समय तो एक ही भारत था, हैदराबाद सिंध में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। उस समय एक आध्यात्मिक परिवार में, वैष्णव कुल में, वल्लभाचारी परिवार में आपका जन्म हुआ। बड़ा सात्विक परिवार, कृपलानी परिवार था, और उस कृपलानी परिवार में उनके पिताजी अध्यापक थे, और भक्ति पूजा पाठ सभी जो भी परिवार के सदस्य सबको करना होता। मैं बाबा कहूँगा क्योंकि लौकिक नाम इनका था दादा लखीराज, लेखराज दादा हम कहते, लेकिन सिंध में इनको कहते थे लखीराज बाबू। तो दादा लेखराज का जन्म हैदराबाद में हुआ, वहाँ ही पढ़ाई की और वहाँ ही बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो बिजनेस उनका फलते फूलते आगे बढ़ता गया, और उसके बाद वो एक प्रसिद्ध जवहरी बने, जवहरात का धंधा शुरू किया। कलकत्ता में उनकी लेखराज दादा की दुकान, लखीराज बाबू की सोने चांदी की दुकान, ऐसा बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। दादा के अंदर वो आध्यात्मिक संस्कार पहले से ही भरे हुए थे। गीता का रोज पाठ करते थे, श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, और दान की बहुत बड़ी प्रवृत्ति, वैसे भी सिंध समाज में दान की बहुत अच्छी भावनाएं रहती हैं, तो उनके दर से कोई खाली न जाए ऐसी उनकी भावना रहती थी। बचपन में थोड़ा भक्ति पूजा पाठ के कारण वैराग्य रहता था, लेकिन वैराग्य एक दिन परिवर्तन हुआ और शादी कर ली। शादी की 5 बच्चे हुए, जिसमें 3 बच्चियां थी, 2 बेटे थे। बाबा ने उन बच्चियों की बड़े घरानों में शादी कराई, अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति वालों के घरों में बच्चियां दी। एक बच्चे की भी शादी कराई, बड़े बेटे की, एक छोटा रह गया था। बाबा का व्यापार जब जवाहरात का शुरू हुआ तो खुद ज्वेलरी बनाते थे, और वो ज्वेलरी सप्लाई करने के लिए उस समय भारत के अंदर राजाएं थे, राजाई थी, इसलिए रानियों को बहुत जेवरात पसंद आते थे। तो बाबा का व्यापार राजाओं की राजाई घराने में हुआ। नेपाल के राजा के पास, इधर भारत में उदयपुर राजा, बीकानेर राजा, जयपुर राजा, बड़ौदा राजा, बहुत प्रसिद्ध राजाएं थे। तो बाबा सबके घरों में अपनी ज्वेलरी देते थे। बाबा की जो रॉयल संस्कार थे, बहुत पवित्र संस्कार थे। बाबा को सभी समाज के अंदर बहुत सम्मान से देखते, बात करते थे। आपने अपने लौकिक जीवन में 12 गुरु किए, जो गुरु से अच्छी दीक्षा शिक्षा मिलती उसको अपना लेते। बहुत रिस्पेक्ट था गुरुओं के प्रति, सत्संग रखाते, बीच बीच में उनके पास जाते। तो ये संस्कारों में जैसे भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। एक बार जब व्यापार खूब अच्छी फलीभूत था, उनको अंदर से वैराग्य आने लगा। गुरुओं से पूछा, मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि 60 के लगभग आयु थी, 60। तो कहा, दादा आप कुछ समय के लिए एकांत में चले जाओ। तो एकांत में बाबा के एक मित्र की कोठी थी बनारस के अंदर, तो उस कोठी में एक मास के लिए एकांतवास करने के लिए आए। और एकांत में बैठे बैठे आपको इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय तक आपने ये सब जो आज हम सब सुन रहे हैं कि इतने बड़े बड़े परमाणु अस्त्र शस्त्र, इतनी एटॉमिक युद्ध की तैयारियां, इतना बारूद तैयार है जो सृष्टि का एक बार नहीं कई बार विनाश किया जा सकता है। और जिसके पास है वही समझता मैं बड़ा हूं। तो उस समय बाबा एकांत में बैठे थे, ध्यानावस्था में आपने देखा कि एक ही बटन दबाते हैं और दूसरा देश पूरा ही अग्नि के अंदर आग का कोला बन जाता, खत्म हो जाते सब। बहुत भयंकर परमाणु युद्ध देखा। परमाणु युद्ध के साथ साथ कुछ स्थानों पर प्राकृतिक आपदाएं देखी कि बहुत जबरदस्त सुनामी आई है, पानी उछल रहा है, प्रलय का दृश्य जैसे बन रहा है, कहीं ज्वालामुखी फटी है, कहीं भूकंप आए हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। और तीसरी तरफ देखा कि धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को बिना कसूर खून कर रहे हैं, मार रहे हैं, गृह युद्ध कर रहे हैं। अब ऐसा दृश्य भयानक विनाश का देख रहे थे, आंखें बंद थी लेकिन असुर धारा बह रही थी। सब क्या होने वाला है, कौन दिखा रहा है, क्या कुछ होगा क्या? तो बाबा कुछ समय ध्यानावस्था से जब नीचे आए तो बहुत दुखी मन से, क्या है सब, चारों तरफ से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर से वो दूसरा दृश्य आया सामने, और उसमें उन्होंने देखा कि कुछ सितारे ऊपर से उतर रहे हैं और नीचे आकर के सुंदर देवी देवताओं की ड्रेस में सजे सजाए रूप में श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल के रूप में दिखाई दिए। और एक सुंदर दुनिया, अच्छे से बगीचे, सोने हीरे के महल, दूध घी की नदियां, बहुत अच्छे पंछी, बहुत सुंदर प्रकृति के वैभव सब बाबा ने देखा। और अंदर से आवाज आती कि ये दुनिया भी बनानी है, ये दुनिया भी बनानी है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। कई प्रश्न उठ गए और उन्हीं प्रश्नों को लेकर के जब आप अपने गुरुओं के पास गए तो गुरुओं ने कहा, दादा ये मुझे इसके विषय में नहीं पता है, ये तो कोई भगवान की कृपा है, भगवान आपसे कुछ शायद कराना चाहते हैं, इसलिए आप और कुछ तपस्या करो, मेहनत करो। तो बाबा ने वहां से फिर बॉम्बे में आकर के शिव बाबा का वहां एक मंदिर है बबुलनाथ का, बाबुरीनाथ कहते हैं। तो बाबा आते थे भक्ति काल के अंदर उस मंदिर में पूजा पाठ करने, तो बाबा वहां आके रहे और बबुलनाथ मंदिर में रोज सवेरे दर्शन करने के लिए जाते, पूजा आराधना करते। और नीचे जब आते तो वहां एक द्वारिकाधीश का श्री कृष्ण का मंदिर था, उसमें कोने में एकांत में बैठ जाते। और जब वहां बैठे बैठे एक दिन विष्णु चतुर्भुज सामने प्रकट हुए श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्ति से ही, और जैसे चैतन्य में साकार में आके कह रहे हैं, अहम विष्णु तत्त्वम, अहम विष्णु तत्त्वम, मैं विष्णु, मैंने इनकी पूजा की, इनको इतना याद किया, भक्ति की, ये कौन है कह रहा, तुम ही बन सकते हो। बस और प्रश्न उठे, लेकिन अंदर से आया कि अब मुझे कुछ नया रास्ता लेना है, मुझे अभी ये व्यापार नहीं करना। और वहां से जब वापस कलकत्ता गए तो उनका पार्टनर उसको बोलने लगे कि अभी मुझे तो ये हीरे हीरे नहीं लगते तो पत्थर लगते हैं, इसका बिजनेस मुझे नहीं करना। तुमको करना है तो करो, नहीं करना तो बांट लो, बंटवारा कर लो। तो वो कहने लगा, दादा मुझे तो पता ही नहीं जवाहरात के बारे में, मैं तो आपका भागीदार सेवक हूँ, साथ रहता हूँ, लेकिन आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो बाबा ने अपने भाई का एक लड़का साथ में था, उसकी भी दुकान थी, उसको कहा कि देखो इससे बात करो, ये जो हिस्सा करे कैसे बंटवारा करना तुम देखो, और मैं तो वापस जाता हैदराबाद। बाबा ने एक धक से निर्णय लिया और वहां से छोड़ा और हैदराबाद में आ गए। वैराग्य वृत्ति थी। तो जब हैदराबाद में आए तो परिवार में कोई उत्सव का माहौल था, वहां गुरु को बुलाया था सत्संग के लिए। सत्संग चल रहा था और बाबा का बहुत रिस्पेक्ट था गुरुओं के प्रति। कहते थे गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, और गुरु के सत्संग में कभी वो बीच से नहीं उठते थे, उनको समझते थे कि इंसल्ट है गुरु की। लेकिन वो पहला ही दिन था जो सत्संग चल रहा है और बाबा अचानक बीच में उठ गए। जब उठे तो उनकी परिवार वाले देख रहे थे, वो भी सत्संग में बैठे थे, कि बहुत ही युगल थी, पत्नी थी, कहने आज बाबा को हो क्या गया, शायद कुछ तो तबीयत ठीक नहीं होगी, कोई तो कारण होगा जो सत्संग चल रहा है और बीच में बाबा उठे। तो जब बाबा अपने कमरे की तरफ बढ़े तो भी पीछे पीछे आई। लेकिन बाबा का कमरा बहुत सुंदर गोल्डन लाइट से भरा हुआ था और उसी गोल्डन प्रकाश के बीच में बाबा जब अंदर गए तो गद्दी पर ऐसे बैठ गए नीचे। बाबा का चेहरा लाल लाल हो गया और उसी समय जो संबंधी थे वो तो बाहर गेट पर ही खड़े थे, अंदर नहीं आए कि क्या हो रहा है, देख रहे थे। तो बाबा के ही मुख से आंखें बंद हैं, एकदम चेहरा लाल लाल है और आवाज निकल रही है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अब ये आवाज बाबा को पता नहीं चल रही थी, बाबा के मुख से ही निकल रही है, लेकिन सामने जो बहनें खड़ी थी उनकी बहु युगल, वो देख रही थी और सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो लाइट खत्म हुई, बाबा की आंखें खुली तो बहनें आगे गई, सामने गई, पूछा बाबा क्या हो रहा था, क्या देख रहे थे। तो बाबा के मुख से निकला, बच्ची कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति थी, मुझे नहीं पता क्या था। तो उन्होंने कहा आपके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे, लेकिन जब बाबा के तन में परमात्मा शिव की प्रवेशता होती है, सुना होगा कि उनका अवतरण हुआ, दिव्य अवतरण, और ये रथ उन्होंने चुना, और इस रथ के द्वारा जब कार्य शुरू हुआ, तो जब बाबा गीता पढ़ते थे, गीता सामने है, लेकिन गीता पढ़ना छूट जाता और अंदर से वो सच्ची गीता जैसे बाबा के मुख से निकलने लगती। जो भी सत्संग में पहले परिवार के आते, फिर आजू बाजू के आने लगे, और बाबा अगर ओम कह देते तो ओम की ध्वनि के साथ सारे लोग जितने थे वो सब ट्रांस में चले जाते, बाबा गुम हो जाता, वहां श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो बहुत एक चमत्कार का जैसे रूप हो गया और हैदराबाद में चारों तरफ आवाज फैल गई कि दादा ने पता नहीं कौन सी शक्ति है जो ओम कहते हैं और सभी लोग ट्रांस में चले जाते हैं। तो सत्संग बढ़ने लगा, कई माताएं बहनें फ्री होती थी, भाई लोग तो बाहर बिजनेस में जाते थे, फिर भी कुछ भाई भी बुजुर्ग घर के आते थे। लेकिन वो सत्संग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, जो बाबा का घर छोटा पड़ गया, और बड़ा करते गए, तुड़वाते गए, आंगन बढ़ा दिया, करीब 2000 लोग हो गए। लेकिन सत्संग में जब बाबा के मुख से सुनते लोग की सतयुग की स्थापना करनी है, श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है और आपको अगर उस दुनिया में चलना है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है और पवित्र जीवन जीनी है। अब ये दो बातें जिन्होंने सुना उनके जीवन में उतरती गई कि हमें तो श्री कृष्णपुरी में जाना है, वैकुंठपुरी में जाना है, मुझे अभी कोई भी नान वेज नहीं लेना है, शराब घर में नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे धारणाएं अपनाने लगे और संकल्प ले लिया कि अभी हमें ब्रह्मचर्य में रहना है, पवित्र जीवन शुद्ध जीवन जीनी है। तो जिन्हों के घरों में शादियां नई नई हुई थी उनके घर में तो झगड़े होने लगे। जब उनके युगल उनके पति बिजनेस से आए, देखें तो घर का माहौल चेंज है, खान पान चेंज है, इनके बोल चाल में इनकी वाणी में ही अलग कुछ दिखाई दे रहा है। कहाँ से सीखा, किसने कहा ये सब? अब दादा का नाम आया कि दादा के सत्संग में सब जाते हैं। जरूर दादा कहीं जादू सीख के आया होगा, कलकत्ता में रहता था, वो कलकत्ता में काला जादू प्रसिद्ध है, वो सीखा होगा। तो बहुत विरोध किया और बाबा की बच्चियां जहां शादी की थी बाबा ने अपनी बेटियों की, वो भी ऐसी निश्चय बुद्धि हो गई और अपने घरों में कहने लगी अब ये चीज नहीं बनेगी, नहीं होगा। तो उनके घर वाले तो और बिगड़ गए, बहुत गुस्सा किया, बहुत दादा को गालियां देना शुरू किया, पिकेटिंग कर दिया, सब इकट्ठे हो गए बड़े बड़े मुखिया लोग शहर के। फिर कोर्ट तक बात गई, राज तो ब्रिटिश का जा था। जब कोर्ट में बात गई तो उसके पहले बाबा ने क्या किया था, बाबा के सत्संग में कुछ बहनें आती थी, कुमारियां थी, और उसमें दो कुमारियां, एक तो ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, दादी प्रकाश मणि जी इधर, और वो जो ऊपर दिखता है ना मम्मा का, ये दोनों एक ही कॉलेज में एक ही स्कूल में एक ही बेंच पर पढ़ने वाली एक साथ आई थी। तो ये 18 साल 17 साल की उम्र थी, 11वीं में पढ़ती थी, और जब आई बाबा की इनके पर दृष्टि पड़ी और इनको अच्छे अनुभव हो गए तो बाबा ने कहा तुम रोज सत्संग में आओ, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया और इनको निश्चय हो गया और ये ऐसे धारण कर लिया जो एकदम जैसे नंबर वन बन गई पढ़ाई में इस विद्यालय में आके। ऐसे ही और कुछ बहनें थी तो बाबा ने ओम मंडली के नाम से, क्योंकि ओम की ध्वनि देते थे तो लोगों ने कहना दिया ये ओम मंडली है, माना एक संघ है, संगठन है, मंडली माना संगठन, तो ओम की उच्चारण करने वालों का एक संगठन है ओम मंडली। तो बाबा ने ओम मंडली के नाम से ही 8 बहनों को ट्रस्टी बना करके इसको रजिस्टर्ड करा दिया, और जब रजिस्टर्ड कराया तो सबसे मुखिया उनकी हेड जो बनाई, बहुत अच्छी प्रवचन में बोलने में गीत गाने में नंबर वन कॉलेज की स्टूडेंट थी वो, जिनका नाम था राधा और इनका नाम था रामा। अब राधा और रामा की ये जोड़ी आई और बाबा ने इनको मुख्य ट्रस्टी बनाया और इन कन्याओं ने, 4 कन्याएं थी उसमें, 4 शादीशुदा बहनें थी, माताएं थी, 8 का ग्रुप चुना। उसमें अपने लौकिक के संबंधियों को कोई को नहीं लिया, लेकिन 8 जो आई बहनें उनके नाम से ट्रस्ट बना और सारा यज्ञ उन्होंने बाबा ने इनके आगे समर्पित किया कि तुम अभी संभालो और कन्याओं माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वंदे मातरम का। तो बाबा ने इनको सब जवाबदारी सौंप दी और खुद कश्मीर चले गए परिवार को लेकर के, क्योंकि हंगामा बाबा के प्रति बहुत हो रहा था। तो ओम मंडली चलने लगी, विस्तार हो रहा था और वही जिस तरह से बाबा की वाणी से अनुभव होता था ऐसे ही मम्मा जब वाणी चलाती और ओम कहती तो ओम कहते ही सारी सभा ट्रांस में। तो एक स्थापना थी, सबको इस मार्ग में चलाना था, एक नींव डालनी थी। लेकिन जब विरोध हुआ और कोर्ट तक बात गई तो कोर्ट में मम्मा को ही भेजा गया, मम्मा ही गई, क्योंकि मम्मा ही हेड थी ओम मंडली की, हम मम्मा कहते हैं ओम राधे। तो ये जब गई तो इनका बोलना, इनकी वाणी, इनके अंदर जो शक्ति स्वरूप था, जज के आगे इन्होंने इतने अच्छे तरह से जजमेंट में जवाब दिए जो सब जज और सुनते रह गए। जो जो आरोप लगा रहे थे पवित्रता का, खान पान का, तो उन्होंने बहुत बेधड़क होके कहा, अगर हम कन्याएं माताएं व्रत लेती हैं तो आप लोग अपोजिशन करते हो, और सन्यासी लोग घर बार छोड़ के अपनी पत्नी को विधवा बना के बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या नियम बनाए? हम तो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, हम तो छोड़ छोड़ रहे हैं कोई को, हम तो सबकी संभाल कर रहे हैं, हम तो केवल कह रहे हैं हमको पवित्र रहने दो, पवित्रता के कारण आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं। तो जज को समझ में आया और उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपको सत्संग चलाना है तो चलाओ, लेकिन बाबा को कहो अपना सत्संग कराची में लेके जाए, क्योंकि हैदराबाद वाले बहुत चिढ़ गए। और कराची और हैदराबाद में केवल एक बीच में नदी थी, ट्विन सिटी है। तो बाबा ने ठीक है, कराची में बाबा का एक घर भी था और चार पांच और कोठियां ले ली, ओम निवास एक ऐसे बिल्डिंग के नाम दिए। और जो भी वहां से भागने लगी बहने, क्योंकि सत्संग की लत तो आदत बन गई थी, तो जब आने लगी तो बाबा ने एक नियम बनाया कि देखो आओ भले, सत्संग में आने की कोई को मना नहीं है, लेकिन अपने अपने संरक्षक की, अपने पति की, अपने पिता की, अपने बड़े भाई की चिट्ठी के बिना हम नहीं रखेंगे, चिट्ठी लेकर के आओ। और वो चिट्ठी में ये लिखाना कि हम ओम राधे के पास, ओम मंडली में ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए जा रही हूं, आप हमें इसकी छुट्टी दो। तो बड़े युक्ति से उन्होंने अपने अपने पति से, पिता से, कैसे भी करके छुट्टी ले ली। और जब छुट्टी लेके आ गए वहीं कहीं तो रहने लगे, तो बाबा ने उनकी पालना के लिए दो विधियां बनाई, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी आए छोटे छोटे, कई माताएं थी जिनके 7-8 साल की बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं। तो बाबा ने बच्चों के लिए अलग से बोर्डिंग स्कूल बनवा दिया और माताओं के लिए सिलाई स्कूल खुलवा दिया कि आप लोग अपनी सिलाई करो, अपने को बिजी करो, और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कुमारियां उसमें थी सत्संग में, उनको उनकी टीचर बना दिया। अब ऐसे ये सत्संग 38 में विधिवत कराची के अंदर, 2 साल तो स्थापना में हंगामे भी थे, लहर थी बहुत ज्यादा, लेकिन 38 के बाद ये सत्संग स्थायी रूप से चलना शुरू हुआ। और फिर बाबा इनको तपस्या कर रहे, योग के लिए सागर के किनारे ले जाते, तपस्या कराते, एक्सरसाइज होती, माना इनकी एक दिनचर्या अलग प्रकार की बनी आध्यात्मिक उन्नति की। अब उसमें जो छोटे छोटे बच्चे आए थे 8 साल 9 साल, बिल्कुल इनोसेंट, कोई दुनिया की बातों का पता नहीं, उनको ट्रांस का पार्ट मिल गया। और वो छोटी बच्चियां जब ट्रांस में जाती तो जितना ये विद्यालय में ज्ञान दिया जा रहा है, जिस आधार से हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब बच्चियां ही देख के ऊपर से आ जाती, और बाबा उनको ऊपर बताता ये है ये है ये है, और फिर नीचे आकर के जब वर्णन करती है तो बाबा कहता, बच्ची तुमसे बोलो चित्र बनाए, आर्ट बनाए, और नहीं आर्ट बना सकती है तो एक नाटक करके दिखाएं स्टेज पर कि क्या क्या देख के आई। तो सबसे पहले एक बहन 9 साल की बेटी, जिसको लौकिक, जिसका नाम था शोभा, बहुत इनोसेंट थी, मम्मी के साथ मौसी के साथ आई थी। तो वो पहले ट्रांस में गई और ट्रांस में जाके देखा कि ये जो बाबा यहाँ है वो ऊपर भी दिखाई दिया। तो वो मूंझ गई कि ये क्या, हमारा बाबा ऐसा नहीं, ये चला जाएगा ऊपर, तो आके रोने लगी। तो बहनों ने पूछा, क्या देखा तुमने जो रो रही है? तो बोलती है, ये जो बाबा यहाँ है वो वहीं ऊपर भी है, पता नहीं ये बाबा चला तो नहीं जाएगा ऊपर। तो बाबा को बात पता चली, बाबा ने कहा, बच्ची तुम ऐसा करना, अभी दोबारा जब दिखाई दे, जब जाओ तो उसे तुम पूछना तुम कौन है, मेरा बाबा तो नीचे बैठा है, उसे बात करके आना। तो वो गई और बहुत भोलेपन से बोलती है कि मेरा बाबा तो नीचे बैठा है, तुम उसी रूप में कहां से यहां आ गए, तुम कौन हो? तो बाबा ने स्पष्ट किया कि बच्ची जो नीचे है पुरुषार्थी है, यही पुरुषार्थ करते करते जब संपन्न बनेगा तब ये संपूर्ण स्वरूप इसका अव्यक्त रूप में ब्रह्मा है, संपूर्ण रूप है ये ब्रह्मा का। तीन पुरी दिखाई, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, परमात्मा के तीन कर्तव्य और इन तीन पुरियों से ही चलते हैं। ब्रह्मापुरी स्थापना के लिए निमित्त बनती है, शंकरपुरी कलयुगी सृष्टि के विनाश के लिए निमित्त बनती है, और विष्णुपुरी से पालना होती है। नई सृष्टि में जब देवताएं आते हैं तो उसी पालना। तो ये सारा ज्ञान जो यहाँ सुनाया जा रहा है उसके चित्र बनाए गए, साकार लोक है, आकारी लोक है, उसके ऊपर निराकारी लोक है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, जिसको हम परम धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। आज से 40 साल 50 साल पहले आबादी कितनी थी? 500 करोड़ भी नहीं थे, आज 800 करोड़ आबादी हो गई, 800 करोड़ से भी ज्यादा है। तो प्रश्न तो उठना चाहिए ना कि आखिर ये कहाँ से आत्माएं आ रही हैं, सब जन्म ले रही हैं, बढ़ रही हैं, कोई जानवर भी बढ़ रहे हैं, वो भी तो ऐसे नहीं जानवर शरीर छोड़ के मनुष्य बन गए आकर के, ये वृद्धि कहाँ से हो रही है, इनका स्थान कहाँ है? तो परमात्मा ने टोटल इसका ज्ञान दिया कि आत्माओं का निवास स्थान इस पांच तत्वों के मांडवे से परे है, जिसको परम धाम कहते हैं, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, और उसके नीचे सूक्ष्म लोक है जो परमात्मा जब आते हैं सृष्टि पर तो उसकी रचना करते हैं। तीन कार्य हैं उनकी, स्थापना, पालना, विनाश, और उसके बाद ही सृष्टि चक्र में आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस सर्किल है और ये रिपीट होता है, रिपीटेशन होती है। ये सारा ज्ञान बच्चियां जाती ट्रांस में, एक नहीं तीन चार बच्चियां ऐसी थी और जा करके देख करके नए नए ढंग से वर्णन करती। एक संदेशी को तो ऐसा पाठ मिला था जो देवताओं के जन्म कैसे होंगे, क्योंकि अभी जो ज्ञान जब सुनते हैं तो समझते हैं अगर हम सब पवित्र रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अब अनादि अविनाशी सृष्टि है, उसको कोई रोक तो सकता नहीं, लेकिन देवताओं के जन्म की पद्धति और आज के मनुष्यों के जन्म में बहुत बड़ा अंतर है। जन्म तो वहां भी हुए, तब तो सृष्टि की वृद्धि हुई, लेकिन देवताओं की महिमा में हम गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जो संपूर्ण निर्विकारी है उसको विकार से जन्म कैसे मिलेगा और विकार से वो जन्म दे कैसे सकता है? तो परमात्मा ने कहा बच्चे आधा कल्प जब ब्रह्मा का दिन है, सतयुग त्रेता है, तो वहां जो जन्म होते हैं वो योग बल से होते हैं, संकल्प की पवित्र शक्ति से होते हैं, और द्वापर जब शुरू होता है, ब्रह्मा की रास शुरू होती है, तो इसमें जन्म जो होते हैं वो भोग बल से, विकारों से होते हैं। अभी समय कलयुग का अंतिम आ गया है, सतयुग को स्थापन करना है, इसलिए अंतिम जन्म में तुम बच्चे अभी उस योग बल को जमा करो, ऐसी पवित्र जीवन बनाओ जो आने वाली दुनिया की स्थापना में आप अपना मदद सहयोग दे सको। इसलिए पवित्र और योगी जीवन बनाना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि नई दुनिया के लिए हम सब कर रहे हैं, कलयुग के लिए नहीं है, ये ज्ञान सतयुग की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें बाबा ने वहां ही कराची में इन बच्चियों के द्वारा स्पष्ट किया। राजाई कैसे चलेगी, माँ बाप अपने बच्चों को राजाई कैसे देंगे, राजाई ट्रांसफर कैसे होगी, जन्म कितने होंगे सतयुग में, गद्दियां कितनी चलेंगी, ये टोटल पूरी पढ़ाई जो हम सब पढ़ रहे हैं, जो इस विद्यालय में पढ़ाई जाती, ये शास्त्रों के आधार से नहीं है। अब वो सब देख के यहाँ वर्णन करती है, और ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा जब प्रवेश होते तो शिव बाबा उसको स्पष्ट करते हैं कि इन बच्चों ने जो देखा है इसका रहस्य ये है, इसका रहस्य ये है। तो ऐसे करके जब पार्टीशन हो रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इनको कुछ पता नहीं, ये अपनी मस्ती में सागर के किनारे तपस्या कर रहे हैं, अपने ये साक्षात्कार कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, बहुत कुछ इनको बाबा ने तैयारी करा दी। और जब पार्टीशन में इसके संबंधी लोग भागे 1947 में वहाँ से भारत में आ गए। भारत में जब आए तो इन्होंने अपना छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर लिया। संबंधी लोग जो आए, कोई कलकत्ता में आए, कोई बॉम्बे में आए, कोई मद्रास में गए, कोई कहीं पर सेट हो गया के, और उनके अंदर कला थी, सीखे हुए बिजनेस करने लगे और बिजनेस करते करते एक बड़े व्यापारी बने। जब सेटअप हो गए तो बाबा को निमंत्रण देने लगे कि बाबा आप अपनी संस्था को, अपने परिवार को लेके यहाँ क्यों नहीं आ जाते, भारत से सेवा करो, वहाँ क्या करोगे आप, वो तो सब मुस्लिम लोग हैं, उनको वो कैसे सुनेंगे। ऐसे ऐसे इनके निमंत्रण यहाँ से जाने लगे। तो बाबा का जो लास्ट गुरु था, जिसके पर बहुत भावना भी थी, उसका नाम था गंगेश्वरानंद, और वो माउंट आबू में ही उसका आश्रम था। तो उसने कहा कि बाबा माउंट आबू बहुत अच्छा है, यहाँ ऋषि मुनियों की गुफाएं हैं, एकांत है, बहुत अच्छी आपके लिए स्थान है ये, आप संस्था को यहाँ लाओ। तो बाबा ने दो बहनों को भेजा, जाओ ढूंढो, देखो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, क्योंकि उस समय संस्था में करीब 350 लोग थे। अब सबका रहने का एक साथ व्यवस्था हो, इतने लोग सब जाएं, कैसे जाएं, क्या हो। तो यहाँ पर हमारी एक दीदी, मनमोहिनी हम दीदी कहते थे, बहुत पैसे वाले घर की थी, उनके भाई का जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में, और बहुत योग्य थी, बहुत नियम मर्यादाओं में, समझ में, बहुत विजडम वाली थी आत्मा। तो बाबा ने कहा बच्ची जाओ देखो माउंट आबू क्या है, कहाँ पर जाना है, कैसे। तो यहाँ आई दो बहनों को लेके और ढूंढती रही सब स्थान, कोई मिले नहीं अच्छा जिसमें 450-350 लोग रहे। लेकिन लास्ट में जब वो वापस जाने लगी तो एक भाई ने आकर बताया, देखो दीदी यहाँ एक कोठी है बस अड्डे के पास, वो भरतपुर राजा की कोठी है, वो बंद पड़ी है, और आप देखो पसंद आए तो बात कर लो। तो देखा कांच से, बंद तो थी, कांच से चारों तरफ झांक के देखा, बड़े बड़े हाल थे, कमरे थे, उनको पसंद आ गई। तो राजा से जब बात कराई लोगों ने, तो उसने कहा बंद ही पड़ी है, थोड़ा सा किराया दे देना, रहो आ जाओ आप। तो बाबा को सुनाया, और वहां के लोगों ने कहा रे आप जाना चाहते हो क्या भारत में, भले जाओ लेकिन आप सब सामान लेके जाओ, क्योंकि उस समय तो लोकतंत्र हो चुका था, हंगामा शांत हो गया था 50 में। तो बाबा ने वहां से सब सामान पैक कराया, सब बहनों को तैयार किया, और 5 मई 1950 कराची से गुजरात तक ओखा बंदरगाह तक शिप आया, जहाज आया पानी का, क्यों सागर है बीच में, और वहां से ओखा बंदर से आबू रोड तक पूरी ट्रेन बुक किया, सब सामान लेकर के, सबके साथ बाबा भी आए, और उसके बाद वहां से आबू रोड से सामान ले लेकर के यहाँ पर भरतपुर राजा की कोठी, जिसको नाम दिया ब्रज कोठी, अब वहां पर इन लोगों ने रहना शुरू किया। सेटअप किया, लेकिन सामान लेके आए थे, थोड़े दिन के बाद जो बाबा के पास संपत्ति थी, जो आराम से 14 साल तक खाया पिया रहे, जो चल संपत्ति पैसा था वो खत्म हो गया, क्योंकि ट्रेन का किराया, जहाज का किराया, सब खर्चे इतने थे, तो खत्म हो गया सब। अब कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं, कोई सेवा नहीं, तो पैसा खत्म। और दूसरी बात, जब माउंट आबू में आए तो यहाँ जैसे अभी वातावरण है ना, मई में आए हैं, जून जुलाई में ये बरसातें खूब शुरू हो गई, और बरसातें शुरू हुई तो न गर्म कपड़े थे किसी के पास, न डॉक्टर थे, न दवाइयाँ थी, और धीरे धीरे पैसा खत्म होने के कारण भोजन की तकलीफ होने लगी, भोजन कहाँ से आएगा, तो जो लाए थे खा पी करके खत्म किया, थोड़े समय तो ठीक चले, और उसके बाद जब परीक्षाएं आई तो कुछ हिले लोग, अब क्या होगा। और बाबा इनको इतना निश्चय, इतना निश्चिंत होके प्रेरणा दे, अरे बच्चे तुम्हारे पास जो धन है वो दुनिया के पास है ही नहीं, वो धन तो पीछे पीछे आएगा, ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, और बाबा एकदम ऐसे बेफिक्र बादशाह कि शिव बाबा कोई परीक्षा लेकर के बच्चों से नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो परीक्षा नहीं लेते ना तो ये सेवाएं शुरू नहीं होती, बहनें निकलती नहीं, सेंटर पर जाती नहीं बाहर को। तो बाबा ने एक साल की परीक्षा ली, लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रखा, खाना पीना सबको रोज मिला। लेकिन ऐसा था कि जो थोड़ा सा कच्चे थे, समझते थे कैसे चलेगा आगे, तो वो अपने बिजनेस के लिए चले गए परिवारों के पास, और वहां जाकर के अपना बिजनेस किया। लेकिन भिखारी वातावरण में वो तो सब जैसे थे वैसे ही बन गए। लेकिन ये जो पवित्र और योगी बहनें थी, कन्याएं थी विशेष करके, उनको इतना विश्वास था कि बाबा की हर बात में कुछ न कुछ कल्याण है, जो बाबा करा रहे हैं उसमें कुछ समाया हुआ कल्याण है। और बाबा कहते हैं तुम्हें विश्व कल्याण करना है, कैसे विश्व कल्याण करना है? तो बाबा ने कहा बच्चे तुमने जो चित्र बनाए है ना, ये ले जाओ और जाओ भारत में जगह जगह पर सेवा शुरू करो। तो पहला 52 में प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ मेला था। अब कुंभ मेले में बहनों को बाबा ने भेज दिया, और वो सब पवित्र कुमारियां 14 साल तपस्या की हुई, उनका आभा मंडल, उनके खुले बाल और सफेद ड्रेस, जब वो वहां गई और बैठी जा करके तो लोग देख करके कहे ये तो कोई परियां आई है, यहाँ के नहीं है ये लोग। और उनको पता भी नहीं था इससे कैसे दुनिया में क्या लोग करते हैं। तो देख करके अच्छे अच्छे अनुभव उनको होने लगे, ज्ञान तो सुनाना बंद, लेकिन उनको देख करके कहे दीदी ये स्थान आपके लिए नहीं है, आपको हम कमरा देंगे, आपको मकान देते हैं, आप अलग ये सेवा करो, वहां बैठो उधर रहो। तो इलाहाबाद से ही फिर सेवाओं का प्रारंभ हुआ। एक सन्यासी ने देखा कि बहनों के पास ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं, तो उन्होंने बोला आप हमारे आश्रम में आओ, हरिद्वार में बुलाया। दो बहनों को बाबा ने कहा जाओ बच्चे। तो उन्होंने उन सन्यासियों की सभा में जब भाषण किया तो सुन करके कहने लगे अरे इतना ऊंचा ज्ञान आपके पास है, चलो धर्म संसद हो रही है जापान के अंदर, आप लोग चलो वहां। तो बाबा ने फिर एक भाई दादा आनंद किशोर यहाँ थे, और दादी प्रकाशमणि, और इनके साथ अमी दादी ने श्री छोड़ा रतनमणि दादी, तीनों को बाबा ने जापान में भेज दिया 53 में। और एक साल तक वहां रह करके उन्होंने जो सेवाएं की ईस्ट साइड में, हांगकांग, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, और जो भी उनसे सहयोग मिलता, क्योंकि लोग कहते भाई आप सेवा करते हैं तो आपको, तो कहती हमें धन नहीं चाहिए, हमें आप चित्र बनवा के दे दो। जो इनके पास चित्र थे वो बहुत सुंदर विदेश के आर्ट छपा करके बहुत सारे चित्र पूरा शिप भर करके जापान से मद्रास में आए, एक साल के बाद आए तीनों जने। जब आए तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारे पास इतना खजाना है, ज्ञान का खजाना बांटो। जब बाबा ने माउंट आबू में उनको आने नहीं दिया, कहा जाओ भारत के अंदर जितनी राजधानियां हैं सब जगह जाओ और ये सेवा करो। तो बहनों ने बस वहां से 54 से सेवाएं प्रारंभ कर दी। 52 के बाद दिल्ली में सेंटर खुला, कानपुर में खुला, लखनऊ में खुला, ऐसे 5-7 सेंटर खुले थे। लेकिन उसके बाद जब ये दादियां वापस वहां से आई और उन्होंने चित्रों के आधार से इधर उधर प्रदर्शनियां लगाना शुरू की, ज्ञान देना शुरू किया, तो बहुत अच्छी सेवाएं प्रारंभ हो गई। लेकिन सेवा तो ठीक, लोग तो आ जाते, खूब क्लास बढ़ जाता, लेकिन जब धारणाओं की बात आती है तो झगड़े होते हैं, कुछ न कुछ बातें टूटती, ऐसा कैसे हो सकता है? इस जीवन में घर गृहस्थ में रहें, पवित्र जीवन जिए, शुद्ध रहें, शाकाहारी रहें, तो बाबा कहे जिनको देवता बनाए वो मानेंगे। देवता घराने वाली आत्मा इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि उसको तो बनना है, और जो नहीं बनना है वो तो सुनेगा और चला जाएगा, आप चिंता नहीं करो। तो ऐसे करके यहाँ पर भारत के अंदर 54 से सेवाओं का प्रारंभ हुआ अच्छी तरह से। 52 से एक दो सेंटर खुलना शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद जगह जगह पर सेंटर खुले। और 65 में मम्मा छोटी उम्र में ही अव्यक्त हो गई, शरीर छोड़ दिया। जब इन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ब्रह्मा कुमारियों की है। आप कहेंगे नाम कहाँ से पड़ गए, नाम इनका राधा, इनका रामा, दीदी का नाम गोपी, जितनी दादियां थी सबके अपने लौकिक नाम थे, लेकिन अचानक चेंज हो गए। दादा का नाम ब्रह्मा कैसे पड़ा, इनका नाम मम्मा कैसे, सरस्वती कैसे पड़ा। तो एक दिन एक ट्रांस में एक संदेशी गई, सामने कागज पेन रखा, सबके नामों की लिस्ट सामने रखी, और बाबा ने कहा बच्चे इनको अलौकिक नाम वतन से बाबा देगा। अब ये ट्रांस में गई, आंख बंद है, और जिसके जो नाम थे उसके नाम के आगे नाम लिखा, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम लिखे सबके। तो सबके नाम चेंज हो गए, कईयों के नाम चल पाए, कईयों के नाम नहीं चले, लेकिन उनके जो कर्तव्य और गुणवाचक नाम थे, जैसे दादी का नाम ब्रह्मा बाबा इनको प्यार से कहते थे, बहुत प्योर सोल है, कुमार का कौमारी है, कुमार का दादा ही। लेकिन शिव बाबा ने इनका नाम दिया प्रकाश मणि है, इसकी मणि का प्रकाश जो है चारों तरफ फैलेगा। गुलजार दादी जिनको हम शोभा कहते, नाम था शोभा लौकिक, उनको ब्रह्मा बाबा ये कहते थे, तो बच्ची फूल जैसी है, गुल है, गुलजार बच्ची है। और शिव बाबा ने ऊपर से नाम भेजा परमधाम से, अपने घर से, कि मेरी बच्ची हृदय मोहिनी है, ये सबके हृदय को मोहने वाली है। दीदी का नाम दिया मन मोहिनी वाली, मन मोहिनी है। ऐसे सभी का नाम चेंज हो गया। मम्मा को नाम दिया, एक ब्रह्मा की सबसे मुख्य बड़ी बेटी सरस्वती है, यही माँ जगदम्बा है। ब्रह्मा बाबा को, इनके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं, ब्रह्मा मुख से सृष्टि की रचना हो रही है, ब्रह्मा है, इसलिए बड़ी माँ है तुम्हारी, शिव बाबा बाप है। तो सबके नाम परिवर्तन हो गए, और यहाँ पर आकर के विद्यालय के रूप में सेवाएं शुरू हुई, इसलिए इसका नाम दिया कि ब्रह्मा की बेटियों के द्वारा, ब्रह्मा कुमारियों द्वारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय संचालित है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पूरे विश्व के लिए विद्यालय, यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर लक्ष्य और उद्देश्य है, ये कोई सत्संग नहीं है, कोई कथा नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई है, और पढ़ाई जहाँ है वहाँ पर पढ़ने वालों के आगे कोई न कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। ऐसे ये विद्यालय के रूप में सेवाएं यहाँ शुरू हुई भारत के अंदर, और वो सेवाएं इतनी विस्तार को पाई, तो जब मम्मा अव्यक्त हुई तो दीदी मनमोहिनी दिल्ली में थी, सेवा कर रही थी, बाबा ने उनकी सीट पर उनको यहाँ रखा। आप पांडव भवन जाएंगे तो कमरा है मम्मा का, जहाँ पर दीदी फिर रही, और दीदी के नियम मर्यादाएं धारणाएं उनकी पालना, वो थी भी शादीशुदा माता, लेकिन उनके अंदर जो धारणाएं थी उसके आधार से पूरे यज्ञ को उन्होंने बाबा के साथ संभाला। लेकिन जब 18 जनवरी 69 को बाबा की 93 वर्ष की आयु थी, बाबा उस समय बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके संपन्न बन रहे थे, संपूर्ण बन रहे थे, तो दादी जी बॉम्बे से आई थी, बॉम्बे में रहती थी गांव देवी में। बाबा ने कहा बच्ची तुमको पार्टी जो लाई हो वापस भेज दो, तुम रुक जाओ। दादी ने कहा, बाबा ने पहली बार रोका, उसे कहते थे तुम बादल भरे है वापस जाओ बरसात करो, लेकिन उस दिन पहली बार रोक लिया कि बच्ची रुको। और 18 जनवरी को शाम के समय बाबा मुरली सुनाने के गए क्लास में, और क्लास में जा करके जब वापस कमरे में आए तो दादी जी सामने थी, दृष्टि दी और हाथ में हाथ दिया, और बाबा ने छुट्टी ले ली, शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छूटा तो दादी के अंदर वो विल पावर तो भर दी बाबा ने, और सब बहनें बाहर सेंटर्स पर, दीदी भी जो साथ में थी उनको भी बाबा ने इलाहाबाद भेज दिया, सेवा पर भेज दिया था। तो दादी जब फोन करे किसी को बोले कि आ जाओ बाबा ने शरीर छोड़ा, तो अरे तुम कहाँ से आई, तुम तो बॉम्बे में रहते हो, बाबा तो मधुबन में है, मैं आई थी, बाबा ने ऐसे ऐसे शरीर छोड़ा, आप लोग आ जाओ, बाबा कहीं गया नहीं है, शरीर छूटा है, ऐसे ऐसे सबको बुला लिया। 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा, 19-20 में जब सभी इकट्ठे हो गए तो 21 तारीख को पांडव भवन में ही उनके पार्थिव शरीर का संस्कार हुआ, वहां पर समाधि है, जाएंगे ना, शांति स्तंभ है। और फिर उसके बाद शाम को भोग लगाने के लिए संदेशी को बिठाया गया। तो जो पहली बहन, जिसको बताया ना शोभा नाम था, बाबा उसको गुलजार बच्ची कहते थे, शिव बाबा ने उनका नाम दिया हृदय मोहिनी, वो भोग लगाने के लिए ट्रांस में गई और 21 जनवरी 69 को प्रथम बार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माओं ने उसमें प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद आगे कैसे इस विद्यालय को चलाना है, अभी कैसे, जब ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा छिप जाते हैं तो तारों की महफिल लगती है, अब बच्चों के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष होना है, ऐसी मुरली चलाई और दीदी दादी को, दादी प्रकाशमणि, दीदी मोहिनी को बुलाया सामने और उनके ऊपर कलश रख करके कहा, यही दोनों बहनें अभी प्रशासन को देखेंगी, जब बच्चे कोई बुलाएंगे, सेवा करेंगे, इनसे राय लेंगे और ये सबको सहयोग देंगे। ऐसे करके बाबा ने विदाई ली। और उसके बाद बाबा कहने लगे, मैं कहीं गया नहीं हूँ, केवल ड्रेस और एड्रेस चेंज की है, ये जो मिट्टी की ड्रेस थी उसके बजाय अभी लाइट के ड्रेस में रहूंगा, और एड्रेस जो माउंट आबू की थी वो सूक्ष्म वतन की एड्रेस बन गई। जो पहला दृश्य देखा था ना, ये साकार ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाएगा, फरिश्ता बन जाएगा, तो ऐसे ही अभी बाबा उसी स्वरूप में हैं। और जब बच्चे कहेंगे, जब बच्चों को कोई राय लेनी हो, डायरेक्शन लेना हो, बाबा आएंगे, जिस तन में कहोगे उसमें आएंगे। तो गुलजार दादी का तन निमित्त बनाया और दीदी दादी के हाथ में पूरी संस्था की बागडोर दी। लेकिन इन दादियों ने इतना एकता का पाठ पढ़ा था, सबको सम्मान दिया, सबको अपने से आगे रखा, कभी ये नहीं आया मैं कर रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, सब अच्छे, भाइयों को भी साथ लिया, बहनों को भी साथ लिया। और जो कुछ साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने कहा था, वो सब शब्द वही होना चाहिए प्रैक्टिकल। बाबा ने कहा था, बच्चे एक दिन आएगा, आबू में बड़े बड़े हाल बनेंगे, यहाँ पर बहुत बच्चे आएंगे, भीड़ लगेगी, आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी, जो बाबा ने कहा था उसी अनुसार उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। और विदेश में संस्था जाएगी, तुम्हारे हर देश के हर धर्म के लोग ज्ञान को सुनेंगे। 71 में दादी ने 5 लोगों को पहले ही लंदन भेज दिया। लंदन में एक माता थी जो इस समय हमारी जयंती दीदी हैं, उनकी लौकिक मम्मी थी रजनी दीदी, रजनी माता, उनके पिताजी थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप बाबा किसी को भेजो यहाँ लंदन में। तो दादी ने यहाँ से भेजा 5 भाई बहनों को, और वहाँ उन्होंने रह करके 1.5 साल में लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सब जगह पर सेंटर खोलना शुरू कर दिया। जब स्थापना का विदेश सेवाएं शुरू हो गई, स्थापित हो गई, तो फिर दादी जानकी जो पूना में रहती थी, उनको बाबा ने तैयार किया, बच्ची को इसको जाना है। बड़ी दादी ने कहा कि तुमको वहां लंदन जाना, कहती मैं दादी वहां जाके क्या करूंगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तो 3 क्लास पढ़ी हूँ। अरे बाबा ने कहा, बच्ची तुमको कोई पढ़ाने नहीं जाना, तुमको मधुबन का मॉडल बनाने जाना, जो मधुबन बना हुआ है यहाँ पर देखती हो ऐसा मॉडल वहां बनाना। अब दादी जब 74 में लंदन गई और वहां रह करके उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी भावनाएं, उनका स्नेह, सेवाओं का विस्तार होने लगा। एक छोटे से स्थान पर, तेनिसन रोड है, अभी भी है, मकान छोड़ा नहीं है, मैं गया था देखा था, छोटे से स्थान में रह करके दादी ने बाहर सेवाएं शुरू की। जयंती बहन साथ थी उनके, और वहां से 1 स्टूडेंट निकला, 2 निकले, और फिर तो मधुबन का सेकेंड मॉडल बनवा दिया, 60 एकड़ में तो रिट्रीट सेंटर ऑक्सफर्ड में बनाया, लंदन के अंदर ग्लोबल हाउस, डायमंड हाउस, बड़े बड़े हाउस, और चारों तरफ से बच्चों की सेवाओं का विस्तार हो गया। दादी जब क्लास कराती सबको बुलाती तो 700-800 लोग इकट्ठे हो जाते। वहां से ही अमेरिका दूसरी जगह जहां दादी ने पांव रखा 140 देशों तक दादी चक्कर लाई। 40 साल वहां रही विदेश में, लेकिन जब दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हुई 2007 में, तब दादी जानकी जी मधुबन में आ गई, माउंट आबू में आई और उन्होंने भी 12-13 साल अच्छी सेवाएं की और 104 साल की आयु पूरी होने पर वो अव्यक्त हुई 2020 में। उसके बाद गुलजार दादी, रतनमणि दादी मुख्य प्रशासिका बनी, लेकिन अभी सिंध का वहां का बीज खत्म हो चुका है। अभी यहां जो सेवाएं शुरू हुई थी 53-54 में, उसमें सबसे पहले मोहिनी बहन जी निकली थी दिल्ली से, अभी न्यूयॉर्क में है, 80 साल की उम्र है, लेकिन उनको मुख्य प्रशासिका बनाया गया है। जयंती दीदी सह मुख्य प्रशासिका है, यहाँ दो बहनें हैं जिनको संयुक्त प्रशासिका सह प्रशासिका, ऐसे करके बहनों की संस्था बहनों ने चलाई और एक ही ऐसी संस्था है जहाँ पर पूरे सेवा केंद्र करीब 40,000 कुमारियां समर्पित होकर के सेवा केंद्रों को संभाल रही है। देश विदेश में कैसे सेवाओं का विस्तार किया जाए उसके लिए बाबा के अव्यक्त होने के बाद एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है और मैनेजमेंट कमेटी में करीब 20-21 भाई बहनों को रखा गया और उनकी मीटिंग समय पर समय हर मास 2 मास में होती हैं। पूरे भारत की सेवाओं को विधिवत चलाने के लिए पहले जोन बनाए गए, फिर सब जोन बनाए गए, फिर मुख्य सेंटर्स बनाए गए, फिर पाठशालाएं खोली गई। आज हजारों पाठशालाएं गांव-गांव में हैं, लाखों बच्चे बाबा के हो गए, 14 लाख परिवार इससे जुड़ गए। ऐसे सेवाओं का विस्तार हुआ। फिर हमारे भाइयों ने एक और प्लानिंग की कि कोई भी वर्ग नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए ज्ञान है। तो फिर यहाँ पर करीब 20 प्रभाग बनाए गए अलग अलग, जैसे मेडिकल का अलग है, इंजीनियर्स का अलग है, राजनेताओं का अलग है, प्रशासकों का अलग है, खेलकूद करने वालों का अलग है, ट्रांसपोर्ट का अलग है, सिक्योरिटी का अलग है, ऐसे रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास, कृषि का अलग है, महिलाओं का है, युवाओं का है, ऐसे अलग अलग प्रभाग बने और उस प्रभाग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर्स पूरे विंग को देखते और उनके क्षेत्र की वही सेवाएं देखते। तो ऐसे पूरे भारत में हर वर्ग के लिए कैसे आध्यात्मिक ज्ञान है और उस आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा चिंतन चेंज होता, हमारा चरित्र अच्छा बनता, हमारा व्यवहार शुद्ध होता। तो इन सेवाओं का बहुत अच्छा विस्तार 83 से 84 से हुआ विंग के आधार से, और अभी तो हर विंग इतनी एक्टिव है जो कहीं पर भी आप देखो ये विंग सेवा कर रही है, अभी ये विंग सेवा कर रही है। तो बहुत सारे सेवाओं के प्लान चलते हैं और बाबा का लक्ष्य है कि मेरे बच्चे जो देवता घराने की आत्माएं हैं, सतयुग से त्रेता अंत तक जो आत्माएं आने वाली हैं, उन सब को ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा। तो आप सब उसी में आ गए हैं, सेलेक्ट हो गए ना, सिलेक्शन बाबा की है ना। तो आप बाबा के घर में पहुंचे हैं, अब बाबा के घर में जब आए हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। बाबा ने अपने बच्चों का बिजनेस नहीं छुड़ाया है, अपने बच्चों की प्रवृत्ति नहीं छुड़ाई है, घर गृहस्थ नहीं छुड़ाया, केवल कहा बच्चे इन बुराइयों को छोड़ना, इन विकारों को छोड़ना है, और उनको छोड़ने के लिए कैसे सहज रीति से छूट जाए उसके लिए योग अभ्यास करना, योगी जीवन बना दो, जितना परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि आपके पास अगर शक्ति नहीं है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसके साथ जुड़ जाओगे तो उसकी शक्तियां ऐसी आएंगी जो उन शक्तियों के आधार से आप सब विकारों को विजय प्राप्त कर लो। इसलिए इस विद्यालय के अंदर केवल 1 घंटे रेगुलर क्लास होती है। मुरली जिसको हम कहते हैं, भगवान के महावाक्य हैं, वो रिवाइज किए जाते हैं, जो उस समय साकार में बाबा ने सुनाए उसको हम साकार मुरली कहते हैं, और जो गुलजार दादी जी के द्वारा बाप दादा ने सुनाए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने, उसको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं। वो अव्यक्त मुरली केवल संडे को चलती है, रिवाइज होती है, और बाकी छह दिन साकार बाबा की मुरलियां रिवाइज होती है। चार ही सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाई है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान माना समझ, केवल आत्मा परमात्मा का नहीं, लेकिन ज्ञान समझदार बनाता, विजडम आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये दुख और सुख का कारण क्या है। भगवान तो दुख भी नहीं देता सुख भी नहीं देता, लेकिन सुख का रास्ता बताता है, तुम दुख के रास्ते से कैसे निकल सकते हो उसकी विधि बताता है, इसलिए उसको कहते हैं सुख हर्त, सुखदाता, दुख हरता सुख करता। तो वो दुख हरता सुख करता हमारे दुख हरने के लिए हमें ज्ञान दे रहा है, और वो ज्ञान समझ है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मैंने सृष्टि चक्र पर पुनर्जन्म कैसे लिए हैं, उसका पूरा ही कर्मों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है बच्चों को। फिर योग सिखाया, कैसे सहज राजयोग से तुम अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकते हो, अपने राजा बन सकते हो, और जब स्व पर राज्य करोगे, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, कर्म इंद्रियों पर, तो तुमसे कोई पाप कर्म विकर्म नहीं होंगे, जीवन में दिव्य गुण आते जाएंगे, आप देवताओं के लायक बन जाओगे। और जब ऐसी जीवन बन जाएगी तो आपके चलने से, बैठने से, व्यवहार से अपने आप सेवा होगी। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चार ही सब्जेक्ट रोज मुरली के अंदर नए नए ढंग से पढ़ाई जाती है, हम सब पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं। सब पुरुषार्थी ही हैं, और जब परफेक्ट हो जाएंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है, इस कलयुगी दुनिया को जाना है। आप समझते हो जाना कि नहीं जाना, यही रहना है। अब ये समय आ गया है, ये जाएगी, लेकिन जाएगी तो ऐसा नहीं परलय हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, कलयुग जाएगा तो सतयुग आ जाएगा। रात जाती है तो दिन आता है, तो अभी कलयुग की रात पूरी होने का समय है, अचानक कुछ भी होगा, लेकिन उसके पहले बाबा कलम लगा रहे हैं देवताओं के घराने की, और आप सबको उसके लिए सिलेक्शन मिल गई, सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, आप सब सिलेक्शन में हो, बाबा की नजर के नीचे हो, और अभी सतयुग के लिए अपने अंदर वो दिव्य गुण धारण करने हैं, बस अब कोई प्रसाद नहीं, ठीक है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो पूछो, समय समाप्त हुआ। ज्योतिका बहन आओ, कुछ पूछना है किसी को, सबको समझ में आया, हिस्ट्री समझी, कोई को कोई प्रश्न है, हाथ उठाओ, ऐसे कुछ पूछना है जानकारी के लिए। भाई लोग कुछ पूछो, हाँ बोलो बोलो जी। बाबा के परिवार में अभी तो मैं समझता हूँ सब चले गए, शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी बेटी थी कलकत्ता में निर्मल शांता दादी, उन्होंने 98-99 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, और दो बेटियां जो थी, एक बेटी बची है वो पारला में है, लास्ट छोटी बेटी सूर्या नाम है उसका, वो बहुत बूढ़ी हो गई है, लेकिन है अभी भी सेंटर पर बॉम्बे में, ओम निवास में रखा है उसको। बाकी और परिवार के सभी सदस्य जा चुके हैं, बेटा भी नारायण लास्ट था, वो भी चला गया, उनका पोतरा भी चला गया, उसको बता था
कोविड के टाइम में
वो भी दोनों चले गए, बाकी और कोई परिवार में नहीं। जी अव्यक्त मुरली क्या है, वही मैं बताया आपको, 69 में जब बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए, माना ये व्यक्त शरीर छोड़ दिया, व्यक्त ये है ना, तो वो जब लाइट के शरीर में अव्यक्त हो गए, तो अव्यक्त रूप में कैसे बच्चों को मिले, कैसे पढ़ाएं, तो उन्होंने फिर गुलजार दादी के तन में प्रवेश किया, और प्रवेश होने के बाद जो मुरली चलाई उसको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं, और वो मुरलियां हमारे पास 69 से 2017 तक 48 साल बाबा ने उनके तन से किसी साल 10 बार आए, किसी साल 12 बार आए, कभी जब शुरू शुरू में थे तो 40 बार 50 बार साल में आते थे। तो सारी मुरलियां हमारे पास संग्रह हैं, हमने खुद टाइप की है, मैं ही उसका राजा। जब मैंने 72 में मधुबन आया तो मैंने टाइप सीखी, सिंधी सीखी, और जो भी बाबा की मुरलियां थी उनको मैंने खुद लिखा, टाइप किया, और उसकी सारी बुक्स हमने छपवाई। अभी सारा साहित्य अव्यक्त बाबा की मुरलियों का हमारे लिटरेचर में है, 48 साल का, उसको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं, और वो अभी संडे संडे रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, समझ गए? और कुछ कोई पूछ रहा है?
और किसी को कुछ पूछना हो? भाई साहब ने कहा ना कि ये पूरे मुरलियों का जो संकलन है वो भाई साहब के पास ही है, जो साकार में भी बाबा ने सुनाए मुरली वो भी, और अब भी जो अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली, तो ये सभी का संकलन भाई जी के पास है। तो आप पूछ सकते हैं, ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं। और भी किसी को हिस्ट्री के बारे में पूछना हो इस संस्था के?
चलाई सब हिंदी में ही, लेकिन इनकी लिपि जो थी ना उर्दू जैसे, सिंधी ऐसे, उल्टी जैसे चलते ना, तो ऐसे लिखा हुआ है हिंदी ही, लेकिन लिखा है रोमन जैसे इंग्लिश लिखते हैं ना, ऐसे देवनागरी क्या बोलते हैं, तो लिखत सिंधी है, बाकी लैंग्वेज सिंधी नहीं है। बोला भी बाबा ने सिंधी में नहीं है, बोला हिंदी में, लेकिन वो पढ़ना उनको हिंदी नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने लिपि जो लिखी वो सिंधी लिखी, उसको हमने सीखी आकर के, तो उसी से हमने टाइप किया। क्योंकि गुलजार दादी जब ट्रांस में जाती थी तो मैसेज लाती थी, बाबा हमेशा नहीं आते थे, तो जब मैसेज लाती थी तो अपनी राइटिंग में ही लिखती थी सिंधी में, तो उसको पढ़ना पड़ता था, मुझे देती थी, जाओ टाइप करके लाओ, सब सेंटर्स पर भेजो, तो मैं उसको टाइप करता था, वो पढ़ना सीखा मैंने। यशु दादी जी बाबा की सारी साकार मूल्यां लिखी थी, वो भी सब लिखी वही लिपि थी उनकी सिंधी, लेकिन है हिंदी। तैतीस करोड़ तो अभी हिंदू हुए हैं, लेकिन उस समय तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ ही होंगे त्रेता के अंदर, बाद में वृद्धि ज्यादा हुई, क्योंकि पहले एक बच्चा हुआ, सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची, त्रेता में 2 बच्चे 1 बच्ची या 2 बच्चियां 1 बच्चा 3 हुए त्रेता में। लेकिन जब द्वापर युग आया तो द्वापर में तो भोग बल की सृष्टि शुरू हो गई, और इसके कारण उनके बहुत सारे बच्चे होने लगे, जनसंख्या की वृद्धि हो गई द्वापर युग से। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ ना 47-48 में, तो उस समय की आबादी भारत की 33 करोड़ थी, तो कहां से देवताएं 33 करोड़ होंगे। लेकिन वो घराना जो था, घराना तो हिंदू कहलाने लगा ना, अब दिव्य गुण नहीं रहे हमारे अंदर तो हम कैसे कहें हम देवता हैं, लेकिन वो घराना हिंदू धर्म के नाम पर चलता आया, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो घराने की आत्मा है 33 करोड़, इसलिए 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, क्योंकि उनका घराना वही है। नहीं, उसमें हमने चेंज ये किया है कि मुरली जो चली वो ओम शांति गीत बजता था, ओम शांति बाबा कहते थे और नमस्ते करके उठ जाते थे, लेकिन जब इसको हमने रिपीट किया तो उसमें दादी कहती थी, अभी हमारे पास कई ऐसे वीआईपी आते हैं, ऐसा कई बिजनेसमैन आते हैं जिनके पास पूरा 1-1.5 घंटे का समय नहीं होता, और उस कई लोगों को ये होता है, दीदी हम नहीं आ जा रहे हैं, हमको इसका सार सुना दो, इसका हमका कुछ एसेंस बता दो। तो मुझे दादियां सिखाती थी कि तुम इसके ऊपर हेडिंग लिखो, सार लिखो, इसका कुछ एसेंस प्रश्नोत्तर के रूप में लिखो, कुछ मूल धारणाएं क्या है वो लिखो। तो हमने ऊपर नीचे ऐड किया, एडिशन है ये, बाबा की मुरली ओम शांति से नमस्ते तक की है, लेकिन ऊपर जो सार है मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर, नीचे धारणा का सार, फिर उसके बाद अव्यक्त बाबा की मुरलियां जब चली तो उसमें से वरदान निकाला, और वो वरदान और स्लोगन फिर लिखे, और अभी एक और एडिशन करा है इसी दो साल एक साल से, अव्यक्त इशारे, अव्यक्त बाबा का क्या इशारा है उसका और एक पॉइंट ऐड किया। तो ये सब एडिशन दादियां समय पर समय मुझे कहती ये करो ये करो, क्योंकि नया नया परिवार बढ़ रहा है, वही मूल्यां अगर बार बार सुनेंगे तो कहेंगे वही रिपीटिशन लगती है, तो उनको कुछ नवीनता भी मिले और अगर कम समय है तो उस सार को समझ सकें, नोट कर सकें, उसको अपने साथ रख सके, इसके लिए उसको ऐड किया गया।
किस किस को लगा कि अभी जो हमने एक घंटा सुना वो बहुत ही अद्भुत कहानी थी, जीवन को परिवर्तन करने वाली अद्भुत कहानी हमने सुनी, एक साधारण मनुष्य दिखने में लेकिन परमात्मा के भाग्यशाली रथ बने और उनकी कहानी अभी हमने सुनी। और किन किन को लगता है कि हम इस कहानी के साथ कनेक्ट करते हैं?
सभी कनेक्ट है ना, तब तो आए यहाँ पर।
लगाना, सभी को लगाना कि कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उस समय हमने इन आंखों से बाबा को देखा नहीं, लेकिन आज भी बाबा अव्यक्त रूप में हम सबकी पालना कर रहे हैं। इसलिए कनेक्शन ज्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पालना की ज्ञान दिया और अब भी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, इसलिए पालना का अनुभव हमें और भी ज्यादा होता है। और ये सब इतना अच्छी रीति से हम अपने रीति से समझ सके, उस हिसाब से भाई साहब ने हमारे सामने ये पूरी जीवन कहानी रखी, ऑलमोस्ट 100 साल की कहानी तो आप हमारे सामने रखी, इसके लिए भाई साहब का हम बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं समझती हूँ बाबा की पालना और भाई साहब ने जो अभी हमको समय दिया, इसका बहुत अच्छा रिटर्न तब हो सकता है जब भी हम सभी मिलके ये प्रतिज्ञा करें कि आज से जो दादियों ने भी पालना दी, क्योंकि दादियों ने हमारे लिए सोचा और भाई साहब को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि पूरे मुरली का सार निकाल के रखो, तो वो दिया जाता है, तो आज से हम सभी को भी वास्तव में संकल्प लेना चाहिए कि और कुछ नहीं तो कम से कम हम उस दिन के मुरली का सार, प्रश्न उत्तर और लास्ट में धारणा के लिए सार, और फिर है वरदान स्लोगन अव्यक्त इशारे, इतना जो हमको छास से क्या किया भाई साहब ने ना, उसको मंथन करके मक्खन निकाल के दे रहे हैं, सब तैयार मिल रहा है, हमको बस उसको खाना है, प्लेट में भी तैयार हमको मिल रहा है और वो हमें स्वीकार करना है। तो कौन कौन समझते हैं कि आज से हम इतना पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे? आपके हाथ में ही आता है, अभी मोबाइल में ही आता है। भाई जी बहुत बहुत थैंक्स कि आपकी प्रेरणा से हम सभी आज से परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे।
आज की जो महावाक्य है ना, आज की अव्यक्त मुरली डिवाइज हो रही संडे है ना आज
जी,
तो आज बाबा ने कहा है बच्चे दो मई को समाप्त करो, दो मई समाप्त करो, एक मई को धारण करो। दो मैं माना एक अभिमान वाला मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं अहंकार, और दूसरा मैं आता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, निराशा, दिल शिकस्त। ये जो मैं आता है ना, ये दो मैं समाप्त करो, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये मैं धारण करो। तो आज बाबा की मुरली में इस मैंपन को समाप्त करने के लिए और तीन शब्दों को विशेष धारण करने के लिए सारा दिया है। एक कोई भी कार्य करना, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वो है, करावनहार वो है, मैं निमित्त हूँ, और निमित्त बन करके निर्माण चित रहना, कभी अहंकार में नहीं आना, नम्रता से चलना और वाणी सदा निर्मल रखना। तो बाबा ने खास होली की मुरली है आज, होली के दिन चलाई है, और कहा होली पर जलाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, ये यादगार आपका है, इसलिए आज जला दो मैं को, और फिर आपस में एक दूसरे को रूहानियत का, स्नेह का रंग लगाओ, प्रभु रंग लगाओ। कैसे लगाओ, उसके लिए पिचकारी कौन सी? बाबा ने कहा दृष्टि ही पिचकारी है, नैनों से आप एक दूसरे को रंग लगाओ। ऐसे बाबा की बहुत अच्छी मुरली आज सभी सेंटर्स पर चल रही है। ओके, ओम शांति।
और मुरली के बारे में जैसे अभी लास्ट में भाई साहब ने कहा कि ये मुरली आज हर सेंटर में चली, तो जितने भी 8,500 सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड वाइड 140 देशों में आज के दिन यही मुरली सुनाई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि परमात्मा के जो संकल्प हमें देते हैं हम इकट्ठा उसको पढ़ते हैं। 10 लाख भाई बहने आज के दिन वो वही बात पढ़ रहे हैं, तो हमारा आपस में कितना पॉजिटिव थॉट्स का संगठन होगा। ऐसा सत्संग शायद कहीं पर भी हो जहाँ पे रोज 1 घंटा ऐसे पढ़ाई होती हो, ऐसे तो कभी हमने शायद सुना नहीं है। तो ये मुरलियाँ हमारे लिए परमात्मा की पालना है, परमात्मा की पढ़ाई है और सद्गुरु के रूप में वरदान है। तो हम फिर से भाई जी का एक हाथ की ताली से हम धन्यवाद करते हैं। और ये प्रतिज्ञा है, हाथ उठाना माना प्रतिज्ञा भी है कि हम मुरली का अध्ययन करते रहेंगे और परमात्मा की पालना का अनुभव करते रहेंगे। इसके पहले कि हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठें, अभी के लिए अनाउंसमेंट ये है कि हम सभी 9:45 को वापस यहाँ इसी हॉल में आएंगे। आप सभी अपने मन को तन को तैयार करके आइएगा। जितना वैल्यूबल क्लास अभी का था और उतना ही वैल्यूबल क्लास आगे भी होना है, वो है आदरणीय जयंती दीदी जी का, जिनके बारे में भाई साहब ने ऑलरेडी अभी हमको परिचय करा दिया। इनके माता जी रजनी माता जी वही निमित्त बने लंदन में सेंटर स्थापन करने के, और उसके बाद विदेशों में सारे देशों में भी सेंटर स्थापन हुए। लेकिन दीदी जी खुद एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और आज एक देश में तो कल दूसरे देश में तो परसों तीसरे देश में, तो बाबा ने इनको फ्लाइंग एंजल का टाइटल दिया है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि आज के समय में इस रिट्रीट के दौरान दीदी जी यहाँ पर है और हम सबसे 1 घंटा मिलेंगे। यूजुअली इस सीजन में उनका रहना नहीं होता है, वो दूसरे तीसरे देशों में फ्लाई करते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन इस बार यहाँ पर है तो दीदी हम सभी से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ दीदी जी जेनेवा में जो यूएन है, यूएन ऑफिस में ब्रह्मा कुमारी इसकी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, और पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी इसकी संस्थाएं सेंटर्स है उन सभी सेंटर्स में दीदी ने विजिट किया है। और उनका तो अगर बायोडाटा पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आप खुद ही उनके वचनों से अनुभव करेंगे। और bkjayanti.org ये वेबसाइट है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं उनके बारे में अगर जानना हो। कईयों ने शायद उनको ऑलरेडी अपने अपने देशों में सुना भी है। तो 9:45 को शार्प हम सभी यहाँ पर वापस आएंगे, ठीक है ना? तो अभी हम नाश्ते के लिए जाएंगे। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, जो भी बैठे ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है ना? बारिश भोजन कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? और आपके साथी जो रूम में है वो भी जरूर ठीक ही होंगे। एक दूसरे का हम सभी ख्याल करेंगे और फिर जब भी मिलेंगे तभी आज जो पांडव भवन की यात्रा होगी हम सबकी, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने अपने परम कर्तव्य किए, उस भूमि का भी हम सभी अनुभव करेंगे। तो अभी हम सभी भाई जी से दृष्टि लेंगे। तो आज तो हम सबको पता चल गया बाबा कौन है, किनको बोलते हैं बाबा? ऊपर में जो ज्योतिर्बिंदु है, अगर सिर्फ बाबा बोल रहे हैं ना, तो वो शिव बाबा है। लेकिन शिव बाबा ने जिनका तन आधार लिया वो ब्रह्मा बाबा का तन था, और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा दोनों आते रहे और अव्यक्त रूप में पालना देते रहे। उन अव्यक्त पालना को भाई साहब ने 73-74 से लिया है, जो 2017 तक चला। तो आपके व्यक्तित्व में वो योग का बल कितना होगा तो वो हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी हम सभी बहुत खुशी से नशे से कि वो परमात्मा की पालना आज भाई साहब के द्वारा परमात्मा हमें अभी भी दे रहे हैं ये अनुभव करेंगे। तो आप प्यार से सभी भाई जी से दृष्टि भी लीजिएगा जब भी हम बाबा को याद कर रहे हैं। ओम शांति।